ज जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी
जय श्री राधा माधव जी की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री लीता विशाखा राधे श्याम जी की जय गौर नित्याई जी की जय शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव नित्याई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कथा प्रसंग में। आज श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 8 और आज इसकी पूर्णा होती है इस अध्याय की, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस कथा प्रसंग में बता रहे हैं। तो आज के जो श्लोक है उसमें श्लोक संख्या 39 से लेकर के 46 तक है, तो हम लोग जो 39 श्लोक पढ़ेंगे। देवा स्वभागम अर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवः सत्रयागा इवस्तस्मिन् एष धर्मः सनातनः इति स्वान् प्रत्यये सधन् वैदेतया जात मत्सरः दुर्बलः प्रबलान् राजन् रहित कलशान् मुहुः। अनुवाद भाई डिवाइन ग्रेस एसी भक्त स्वामी प्रपाद की। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है, क्योंकि हर एक को समान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग ले, अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। तात्पर्य, अमृत पाने की इच्छा वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें कही। स्वाभाविक था निर्बल दैत्यों ने प्रबल दैत्यों को बिना बंटवारा किए अमृत बांटने पीने से रोकने के लिए देवताओं का समर्थन किया। इस प्रकार जब दूसरे को अमृत पीने से रोका गया तो असहमति से बखेड़ा खड़ा हो गया। एतस्मिन् अंतरे विष्णुः सर्व उपायवेत् ईश्वरः योषित रूपम् अनिर्देश्यम् दधारा परम अद्भुतम पेक्षणीय उत्पल श्यामम सर्व अवयव सुंदरम समान कर्ण आभरणम सुकपोल उन्नस आननम भार क्रस उदरम मुख आमोद अनुरक्त अली झंकार केश भारेण माला उत्फुल मल्लिकाम सुग्रीव कंठ आभरणम सुभोज अंगद भूषितम विरज अंबर कांच शलत चरणपुरम सव्रीड स्मित विक्षिप्त भ्रूविलास अवलोकनैः देतयूथप चेतः सु कामम उद्दीपयत मुहुः। सर्वोपाया विदिश्वरः योषित रूपम निर्देश्यम दधारा परम अद्भुतम प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम प्रणाभरणम सुकपोलोन्नासाननम नवयौवनिवृत्त स्तनभार क्रसोदरम मुखामोदार अनुरक्त अलीझंकारोद्विग्नलोचनम बिभ्रसुकेशभारेण मालाम उत्फल मल्लिकाम सुग्रीव कंठाभरणम सुभुजांगद भूषितम विरजांबर संवीत नितंब द्वीप शोभया कांचया परिलस्वत वल्गो चल चरण भ्रूविलास अवलोकन दैत्ययूथ पचेतासु कामम उद्दीपयन मुहुः। तो हम लोग लास्ट वर्स जो 46 है उसको रिसाइट करेंगे। मैं दो बार रिसाइट करता हूं। सव्रीडा स्मृत विक्षिप्त भ्रूविलास अवलोक नहीं दैत्ययूत पचेतासु कामन उद्दीपयन मुहुः। सव्रीड स्मृत विक्षिप्त भ्रूविलास अवलोक नहीं दैत्ययूत पचेतासु कामम उद्दीपयन मुहुः। सव्रीडा स्मृत विक्षिप्त भ्रूविलास अवलोकन दैत्ययूत पचेतासु दीपयन मुहुः। माताजी सव्रीडा भ्रूविलास अवलोकन दैत्ययूथ पचेतासु कामम उद्दीपयन मुहुः। माताजी सव्रीड स्मृत विक्षिप्त भूवरास अवलोक नहीं कामम उद्दीपयन मुहुः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन गेस एसी भक्तिद्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। एतस्मिन् अंतरे इस घटना के बाद विष्णु हो भगवान विष्णु ने सर्व उपाय वित विभिन्न परिस्थितियों से निपटने में पटु ईश्वर परम नियंता योषित रूपम सुंदर स्त्री का रूप आनिर्देश्यम यह कोई यह निश्चित नहीं कर सका कि वह कौन थी। दधारा धारण किया परम अद्भुत अत्यंत सुंदर समान एक समान कर्ण आभरणम कान के आभूषण सुकपोल सुंदर गाल उन्नस आसन आननम मुखमंडल में उभरी नाक नव यौवन नवीन तरुणावस्था निवृत्त स्तन स्थिर उरोज भार क्रस अत्यंत दुबली तथा पतली उदरम कमर मुख मंडल आमोद आनंद उत्पादक अनुरक्त आकृष्ट अली भौरे झंकार गुनगुन की आवाज करते उद्विग्न चिंता से लोचनम उसकी आंख आलाम फूल की माला से उत्फल्ल मल्लिकाम पूर्ण विकसित मल्लिका के फूलों से बनी सुग्रीव सुंदर गर्दन कंठ आभरणम सुंदर रत्नों से जड़ित सुभुज सुंदर भुजाएं, अंगद भूषितम बाजूबंदों से सहित, विरज अंबर अत्यंत स्वच्छ वस्त्र, संवित फैला नितंब नितंब, द्वीप द्वीप की तरह लगने वाला, शोभया ऐसी सुंदरता से, कांचया करधनी प्रवीलसत फैली हुई, वल्गु अत्यंत सुंदर, चलत चरण नुपुरम हिलते डुलते पायल, सव्रीड स्मित सलज्ज हास, विक्षिप्त दृष्टि फेरते भ्रूविलास, वो असुरों के नायक, चेत हसु हृदय में कामम कामेच्छा उद्दीपयन जगाते हुए मुंह हो निरंतर। अनुवाद, तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मनभावन था। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के का रंग का था, उसके शरीर का हर रंग सुंदर ढंग से बना था, उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अति सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल तुरणा की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थीं, उसके बाल अत्यंत सुंदर थे, उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी, उमंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके इतन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत होते थे। उसके पांवों में पायल शोभा दे रही थी। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बागी चितवन फेरती तो उसकी बहों के हिलने से सारे असुर काम इच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हरेक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। तात्पर्य बहुत छोटा, तात्पर्य रूपा जी ने लिखा है इसमें। असुरों में काम भावना जगाने के लिए श्री भगवान ने सुंदर स्त्री का जो रूप धारण किया उसकी सुंदरता का यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत क्षीर सागर का मंथन नामक आठवें अध्याय का भक्ति विदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं देवं राधा कृष्णपादां श्रीगुणजातांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी व्रषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। तो इस कथा प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ और समुद्र मंथन से जो रत्न निकले हैं उनका किस प्रकार से विभाजन हुआ और विभाजन के साथ में जब अंत में अमृत निकला है तो उस अमृत के लिए किस प्रकार से झगड़ा शुरू हो गया। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप में आती है। श्री भगवान से मिलने उनके वैकुंठ गए तो रास्ते में बड़ा सुंदर स्थान दिखा उनको, एक विद्याधरी के हाथ में समंतक फूलों की बड़ी, पुष्पों की बड़ी सुंदर माला थी। तो उस माला को देख करके दुर्वासा मुनि के मन में इच्छा हो कि मैं माला ले लूं, और उस विद्याधरी सुंदरी ने दुर्वासा जी को माला अर्पण कर दी। बड़े प्रसन्न हुए, चले जा रहे थे। मन मौजी हैं दुर्वासा जी, जब चले जा रहे तो देखा कि सामने से ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र, देखिए उनका एक ही महान गुण है इंद्र के, देवताओं के अंदर, कि जब भी विपत्ति आती है तो भगवान की सरता की संतान है, कश्यप मुनि की संतान है। दक्ष प्रजापति ने कश्यप मुनि को 13 अपनी कन्या विवाह कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी 13 कन्याओं से पूछा, अलग अलग कन्याओं से पूछा किसको आप चाहती हो, तो उन 13 कन्याओं ने कहा कि हम लोग दक्ष प्रजापति माता से। सारे सुर आ गए, देवता आ गए, कद्रु से बड़े बड़े सर्प, शेष, वासुकी, अनंत, सारे सर्प कद्रु से आ गए। विनिता से गरुड़ और अरुण आ गए, उसी प्रकार बाकी जो पत्नियां थी उनसे बहुत सारे पुत्र रत्न आ गए, लेकिन दिति के पास कुछ भी नहीं था, वो संतान ही नहीं थी। तो भागवत जी में 3रे स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि दिति ने अनुचित समय में पुत्र कामेच्छा से कश्यप मुनि को अप्रोच किया, और उनकी जिद के कारण तो क्या हुआ, उनके गर्भ में 2 पुत्र आए, लेकिन वो कौन थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिनसे सारे समाज का, सारे देवताओं का बहुत विनाश होने वाला था। तो सुर असुर दोनों भाई हैं, लेकिन जो सुर हैं, जो देवता हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान इसीलिए उनके उनको जो है पसंद करते हैं। हम लोग देखेंगे कथा में आगे क्या होता है। तो इंद्र ने वो माला अपने गले से निकाल कर ऐरावत हाथी के गले में डाल दी, और ऐरावत को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अपनी माला निकाल करके अपने पैरों के नीचे उन्होंने कुचल दी। जब वो कर दिया, दूर से दुर्वासा जी देख रहे हैं, तो दुर्वासा जी ने तुरंत, क्योंकि दुर्वासा जी तो बड़े प्रसन्न भी होते हैं और बड़े अप्रसन्न भी होते हैं, तो क्रोध में भर गए और उससे कहा कि तुमने मेरे कृपा प्रसाद का अनादर किया है। विष्णु पुराण में 1914 में आता है, मया दत्तम इमम मालाम यस्मन नान बहु मन्ने से त्रिलोक के श्री रतो मूढ़ विनाशम उच्यति। जो श्री है, तुमने ये कार्य किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, और जो है उसके कृपा प्रसाद को उस तरीके से जो मैं लेके आया था, तुमने उसको हाथी के पैरों चले कुचल दिया है, तो इसकी वजह से तुम श्रीहीन हो जाओगे। और उस श्राप के कारण जब इंद्र को आभास हुआ, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि तुरंत ऐरावत से नीचे उतरे हैं इंद्र, और दुर्वासा जी के चरणों में गिर के बड़ी क्षमा प्रार्थना की है। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं बृहस्पति नहीं हूं, ये मत समझना मैं बृहस्पति हूं, अपने गुरु का अनादर करके तुम बच सकते हो, लेकिन मेरे क्रोध का कोई उपाय नहीं है। इंद्र बड़े दुखी हुए, लेकिन उस श्राप के कारण उनका जो श्री था वो चला गया, और उनका ही श्री नहीं गया, प्रभु जी माता जी तीनों लोकों में यज्ञ के रूप में जिस जिस रूप में श्री था सबकी हानि होने लगी। इंद्र के पास उस समय स्वर्ग में अमरावती में उच्छवा घोड़ा जो समुद्र से निकला है, ऐरावत हाथी जो जो थे, बलि ने जब पता चला कि इंद्र को इस तरीके से श्राप मिला है, तो बलि महाराज ने आक्रमण किया, और जो रत्न थे वहां पर उनको लेकर के वो चले हैं। बलि जब उनको लेकर के चले देवताओं को हराने के बाद में, तो उनमें से जो अधिकतर रत्न जैसे उच्च सभा घोड़ा है रवा हताती है वो असुर के पास नहीं रह सकते, तो इसलिए वो उनके हाथ से निकल करके कहां गिर गए, समुद्र में गिर गए, जो वापस समुद्र मंथन में हमको प्राप्त होंगे। देखिए जो समुद्र मंथन की कथा है, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी सुन रहे हैं, विदुर मैत्रेय मुनि से सुन रहे हैं, और जब ये सब सुन रहे हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि महाराज परीक्षित एक प्रश्न पूछ, देखिए कथा कैसे आती है, जब तक आप लोग प्रश्न नहीं पूछोगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो आठवें स्कंद के पांचवें अध्याय के दसवें श्लोक में परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, पयोधि ये निर्मध्य सुराणाम साधिता सुधा ब्रह्मणो अस्मि धृता काम रूपेण मंदरहा, कि क्षीर सागर का मंथन करके अजीत भगवान का नाम, एक अजीत, अजीत भगवान ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया, कछुए के रूप में वे महान पर्वत को उठाकर, मंदर पर्वत को उठाकर अपनी पीठ पर धारण किए, तब वे इधर उधर डुल रहे थे। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी एकाग्रता क्या है, देखिये श्रीमद भागवतम क्या है, श्रीमद भागवतम व्यवहार है हमारा दिन प्रतिदिन, हमारा जो एक दूसरे से व्यवहार है, हमको संसार में किस तरीके से कार्य करना चाहिए वो हमको सिखाती है। शिक्षा हर श्लोक से हमको मिलती है। शिक्षा क्या मिलती है कि हमने ये खाली सुना भागवत जी के अंदर कि अजित भगवान ने समुद्र मंथन किया, देवताओं को अमृत पिलाया और उसके बाद कच्छ का धारण किया, कथा समाप्त हो गई। लेकिन जो एकाग्र चित्त से सुनने वाला है उसको संतुष्टि नहीं होगी। अर्जुन भगवान से कहते हैं दसवें अध्याय में कि नास्ति में अमृतम, मुझे शांति, मुझे तुष्टि नहीं हो रही है। विदुर महाराज अमृत इनसे मैत्रेय मुनि से कहते हैं आप मुझे कथा प्रसंग बता रहे हैं, मुझे कोई सुनने से तृप्ति हो ही नहीं रही, मैं और सुनना चाहता हूं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने जो मुझे सुनाया है उससे मुझे और सुनने की इच्छा है। तो उसके प्रश्न के उत्तर में फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से असुर जो है वो देवताओं पर आक्रमण किया है और सारे देवता लगभग काफी हार भी गए हैं, उनमें से काफी को शारीरिक चोटें भी आए हैं, किसी के हाथ अलग हो गए, किसी के पैर अलग हो गए। उस सारी परिस्थिति में जो मैंने पहले बताया कि देवताओं के पास एक ही गुण है, वो क्या गुण है, भगवान की शरण में जाते हैं, सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान विष्णु के पास आते हैं। एक सुंदर श्लोक बोलते हैं सब मिलकर के, आठवें स्कंद के पांचवें अध्याय का 45वां श्लोक प्रभुज में क्या कहते हैं, सात्वम नो दर्शयात्मानम अस्मत् कर्ण गोचरम प्रपन्ना नाम निद्रक्षाणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। हे भगवान प्रपन्नम, हम आपके शरणागत हैं, भगवान इतने दयालु हैं, उनसे दयालु कोई भी ऊपर नहीं है। तो जब उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान अपने को भी दे डालते हैं उसको, भगवान अपने को अपने भक्त को बेच भी देते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान हम आपके शरणागत हैं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, कृपया अपने आदि रूप तथा मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। ये वो लोग पूछते हैं देवता लोग। भगवान बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि मुझे सब पता है और ब्रह्मा शिव अन्य सब देवताओं मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि जो मैं कहूंगा उसमें सबका कल्याण है। एक स्टेटमेंट आया भगवान की तरफ से, जो भी मैं कहूंगा उसमें सबका कल्याण है। इसका मतलब क्या है, भगवान सत्यनिष्ठ है, भगवान के श्रीमुख से जो भी निकलता है वो सत्य है। इसका मतलब जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है उसमें एक एक श्लोक में जो भगवान ने लिखा है वो सत सत्य है, और उसका हम जब पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न की प्रसन्नता का मतलब ये है कि हम स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। हर जीव सुख चाहता है, सुख चाहने का उपाय यही है कि जीव जो है भगवान, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, हम भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के नाते हमारा एक ही वो है जो हमारा पर्पस होना चाहिए, क्या? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो समय अनुकूल नहीं है तो इसलिए तुम क्या करो, क्यों अनुकूल नहीं है? क्योंकि तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है। इंद्र पहले भी बृहस्पति का अपमान कर चुके हैं, और ब्राह्मण के अपमान का मतलब है कि जो से तुमने हार ली है, जिससे जिनसे तुम्हारी हार, उन्हीं के पास वापस जाओ, उनसे संधि करो, और संधि करने के बाद में संबंध मंथन करना है। संबंध भगवान सारी योजना असुरों को समझा देते हैं, पूरी योजना। अब पूरी योजना समझा करके भगवान क्या कहते हैं कि क्षीर सागर में अब मंथन तो होना है, लेकिन मंथन किस प्रकार होना है? खाली मंद्राचल डालेंगे, वासुकी आएंगे, भगवान आएंगे, मंथन हो जाएगा? लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां वो भी डालनी है, और तृण घास, लताएं और औषधियां वो सब डालनी है। क्षीर सागर में क्या है? क्षीर है, दूध है, तो दूध के साथ बाकी सारे इंग्रेडिएंट अवयव है वो भी डालने हैं। जब वो डाल दोगे तो मेरी सहायता से मंद्राचल पर्वत के द्वारा उसको वासुकी नथानी बनाकर जब हम उसका मंथन करेंगे तो हमको अमृत प्राप्त होगा, वो अमृत तुम लोग ले लेना। एक बड़ा सुंदर श्लोक भगवान बोलते हैं, छठे अध्याय का 24वां श्लोक। यूयम तदनुमोद्वम यद इच्छन सुरासुरा नासनभेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्था सानुमत्या यथा। हे देवताओं, अब मत ध्यान से सुनना, हे देवताओं, धैर्य तथा शांति के हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। हमारी भागवतम भगवत गीता क्या है? ये भी साइंस और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले है ना, तो भगवान ने फॉर्मूला दे दिया यहां पर। भगवत गीता में भगवान ने शांति के लिए क्या फॉर्मूला दिया? 5.29 में भोक्तारे मगतप साम सर्वलोक महेश्वरम सूरदर्शर भूतानाम ज्ञातवा माम शांतिम इच्छति। अगर शांति चाहते हो तो 5.29 जीवन में अप्लाई करो, शांति शांति रहेगी। तो यहां पर फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं कि जब धैर्य और शांति से हर कार्य संपन्न किया जाता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीन चीजें भगवान ने बताई, धैर्य रखना है, शांति रखनी है, और क्रोध नहीं करना है। तो देवताओं को पहले ही समझा दिया, समुद्र मंथन में धैर्य, शांति और क्रोध को क्रॉस कर देना है। क्रोध का क्या है? वो एंगर, और एंगर के साथ में डी लगा दे तो क्या बन गया? डेंजर, बहुत खतरनाक है क्रोध, है ना। तो क्रोध मंथन शुरू हुआ। हम सब जानते हैं कथा प्रसंग में कि भगवान ने स्वयं मंद्राचल पर्वत को लेके आए, गरुड़ के पीठ पर रखा, समुद्र में क्षीर सागर में डाला है, और कच्छप के रूप में नीचे से अजित भगवान के राम ऊपर से असुरों में देव और सुरों में और वासुकी में तीन रूप में भभगवान प्रविष्ट हुए हैं। किस किस रूप में प्रविष्ट हुए हैं? वासुकी में तमोगुण रूप में, असुरों में रजोगुण, और देवताओं में सतोगुण रूप में प्रविष्ट होकर के, क्योंकि देवता और वासुकी और दैत्य किसी भी रूप में अपनी शक्ति से समुद्र मंथन का कार्य संपन्न नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान ने तीनों में प्रविष्ट होकर के पूरा समुद्र मंथन का कार्य पूरा किया। और पूरा करने के बाद में जो जो हमारे पास सारे रत्न आए हैं, तो हम लोग देख रहे थे कि कितने रत्न आए हमारे पास, 14 रत्न आए हैं। सबसे पहले क्या आया? हलाहल विष आया, और ये विष इतना तीव्र था, कहा जाता है कि जैसे ही विष समुद्र से निकला है वो फैलने लगा, और फैलने लगने से दैत्य और दानव दोनों समुद्र मंथन में इतने मग्न थे उसको उनका पता भी नहीं चला। तो क्या लिखा है कि फिर उनको नारद मुनि ने आगाह किया कि देखो ये क्या चला रहा, तो उन्होंने फिर सब छोड़ के भाग खड़े हुए सबके सब। फिर भगवान शिव की प्रार्थना करी, भगवान नीलकंठ ने इसको कंठ में धारण किया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। और उसके बाद क्या निकला, जो उत्सवा घोड़ा बलि के हाथ से गिर गया था वो निकला, उसे बलि ने ले लिया। और उसके बाद में ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी कहते हैं कि ऐरावत के साथ आठ हाथी और आए, उनके चार चार दांत हैं और रंग बिल्कुल शुभ्र सफेद है। और जो उत्सवा घोड़ा है उसका भी रंग बिल्कुल सफेद है, दूध के समान सफेद है वो। उच्च सभा, कुछ लोग ये कहते हैं कि उच्च श्रवा, कि जो ऊंचे स्थान में रहने वाला है, ऊंचा सुनने वाला है, अलग अलग नाम इसे बताए गए उच्च श्रवा के बारे में। तो उसके सात मुख है, उच्च श्रवा घोड़े के सात मुख है। और उसके बाद जो है कौस्तुमणि निकली है, कौस्तुमणि पद्मराग मणि उनको भगवान ने ग्रहण कर लिया। और उसके बाद कामधेनु गाय निकली जिसको ऋषियों ने ले लिया, प्रभु जी माता जी। और ऋषियों के लेने के बाद में फिर माता लक्ष्मी आ गई। हम सब ने पीछे कथा प्रसंग में सुना है किस प्रकार इंद्र ने, सारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने माता लक्ष्मी का अभिषेक किया उनको सब, और भगवान उन्होंने भगवान हरि के गले में माला, सारे देवता प्रसन्न हो चुके, दैत्य के ऊपर लक्ष्मी कृपा नहीं हुई लेकिन देवताओं के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हुई। उसके बाद में जब अप्सराएं आई हैं तो उनमें सबसे पहले रंभा अप्सरा आई, और रंभा, मेनका और एक और अप्सरा, तीन अप्सरा वहां से निकली हैं। और वो अप्सराएं देवताओं के पास चले गए। फिर बीच में कल्पवृक्ष भी आया था, मैंने छोड़ कल्पवृक्ष आया था बीच में तीसरे नंबर पे। फिर दसवें नंबर पे परिजात वृक्ष आया। जो परिजात वृक्ष है ये कहाँ कैसा है कि इसकी उत्पत्ति जब हुई है इसके फूल इतने खूबसूरत होते हैं और इसके कई रोगों में इसके जो फूल पत्ते हैं वो हमको फायदा पहुंचाते हैं। तो परिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में चला गया। फिर वारुणी निकली, वो देवताओं के पास चली गई। और उसके बाद शंख निकला है, शंख के बाद में जो पांच जने शंख है वो निकला। फिर चंद्रमा का उदय हुआ तेरहवें नंबर पे, और जो चौदहवां नंबर है उसमें क्या आया है, धन्वंतरी भगवान कलश हाथ में लेकर के आए और उसे दैत्यों ने छीन लिया। और छीनने के बाद में दैत्यों के ऊपर झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा क्या चल रहा है, किस बात का झगड़ा है बताइए, कलश हाथ में है, ठीक है ना। जब कलश हाथ में है, मैं केवल मैं का झगड़ा है, पहले कौन, मैं पहले पीऊंगा, तुम पहले नहीं पियोगे। और हमारे जीवन में ही मैं ही हमारे दुखों का कारण है। हम चीज को कहते हैं कि मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मां ममेति, कि ये मैं जो है संसार में हमको भगवान से दूर रखने का एक विशेष कारण है, जो मैं जो है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, 27वें श्लोक में 10वें अध्याय के, उत्सव अश्वनाम विद्धि मामृतोद्भवम एरावतम गजराणाम नरणाम च नराधिपतम। आठवें श्लोक में भगवान ने क्या कहा भगवत गीता के, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे आता है। तो एरावत और उत्सवा ये भी भगवान से ही आए। भगवान ने ये कहा कि एरावत जो कौन है वो भी मैं हूं, उत्सवा वो भी मैं ही हूं। तो इसलिए प्रभु जी माता जी क्या कहा गया है कि जब इस तरीके से झगड़ा हो रहा था, तो आज का जो हमने श्लोक देखा उसमें क्या लिखा है कि अमृत की इच्छा पाने वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें की। तो झगड़ा तो हो रहा है, अब कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, और जो स्ट्रांग है उसके हाथ में कलश है, तो उसको मना करने का उपाय क्या है, ताकत से कर नहीं सकते, तो दूसरा उपाय क्या है, लॉजिक। तो लॉजिक उन्होंने ये दिया कि भाई देखो इस समुद्र मंथन में देवताओं दैत्यों ने समान भाग लिया है, जब सबने समान भाग लिया तो उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए, ये तो आप अनीति कर रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने दैत्यों के लिए जो स्ट्रॉन्ग थे उनको मना किया। फिर भगवान विचार करने लगे, दैत्य निराश हो गए, देवता निराश हो गए, इतना हमने अथक परिश्रम किया है, भगवान ने स्वयं हमारे साथ परिश्रम किया है, और ये अमृत का जब समय, अमृत वेला आई है अमृत पीने के लिए, उसे देते लोग छीन करके ले गए, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि उनसे वापस छीन सकें, तो हम क्या करें, तो एक ही काम करें जो देवता हमें किया, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, बल का प्रयोग करना चाहिए या नीति का प्रयोग करना चाहिए। भगवान उचित समय पर उचित कार्य करते हैं, तो हमको ये सीख मिलती है कि जैसे दिति ने अनुचित समय पे गर्भाधान किया उसका परिणाम क्या हुआ, दैत्य आ गए, इसलिए हमें उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए। तो भगवान ने निश्चय, सुर हैं उनकी जो कमजोरी है वो क्या है, उस कमजोरी का उपयोग करके उनसे कलश जो अमृत का है वापिस लेना है। भगवान ने मोहिनी मूर्ति रूप धारण किया, मोहिनी मूर्ति भगवान की। और ये रूप धारण जो भगवान ने किया है वो आप देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने ये रूप धारण किया, पूरा वर्णन दिया गया, एक एक अंग का उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने उनकी जो चितवन है और चितवन से वो क्या कर रही है, मोहिनी मूर्ति किसको देख रही है, असुरों को देख रही है। असुरों ने जैसे ही उनकी ओर देखा है मोहिनी मूर्ति की ओर, कथा प्रसंग में आगे आएगा, आज का विषय नहीं है वो, कि सारे असुरों के चित्त बाद में वो हाथ का जो कलश है अमृत कलश उसको वो भूल गए और उसकी उसकी जगह किसने ले ली उनके चित्त में, सबके चित्त में पहले क्या भरा हुआ था, अमृत अमृत अमृत, और अब मोहिनी मूर्ति ने जगह ले ली। वो कथा प्रसंग आगे आएगा प्रभु जी माता जी। लेकिन एक चीज हमारे जीवन में जो हमेशा होती है वो क्या है कि हम लोग इतना सब सुनने के बाद भी जो शिक्षाएं हैं जो भागवत जी की भगवत जी शिक्षाएं अपने जीवन में नहीं उतारते। इंद्र के समुद्र मंथन से, वत्सासुर के प्रसंग से हमने क्या सीखा कि इंद्र ने अपने गुरुदेव का अपमान किया, इंद्र ने दुर्वासा जी का अपमान किया। जब इंद्र गुरुदेव का अपमान करते हैं बृहस्पति का, उस समय सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनसे क्या कहते हैं कि देवताओं तुम लोगों ने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया, वे परम ब्रह्म ज्ञाता इंद्रियों को वश में रखने वाले अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। बृहस्पति कौन है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, तो तुमने गुरु ही नहीं ब्राह्मण का भी अपमान किया है। और ब्राह्मण भगवान सब सह सकते हैं लेकिन भगवान क्या नहीं सह सकते, ब्राह्मण का अपमान नहीं सह सकते। क्यों, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन है बेसिकली। जब भगवान उद्धव जी को 11वें स्कंद में कथा बताते हैं तो उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुव्राजयम यम नित्यम पूये इत अंग्र रेणु भी। भगवान क्या कह रहे हैं, वो ब्राह्मण निरपेक्षम जो किसी का पक्ष निरपक्ष बिल का पक्ष लेने वाले नहीं है और इच्छाओं से रहित है, और कैसे ब्राह्मण शांत है, निर्वैरम उनका किसी शत्रु भाव नहीं है, सम दर्शनम सबको संभाव देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अनुव्राजमि हम नित्यम, मैं उन सिद्ध भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता हूं। तो आप सोचिए प्रभु जी माता जी, भगवान उन ब्राह्मणों का उन भक्तों का सिद्ध भक्त के चरणों का अनुसरण करते हैं। क्यों क्यों अनुसरण करते हैं, क्यों कह रहे हैं कि उनके अंग्रेणु भी ही उनके चरणों की जो धूल है, मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित जगत को शुद्ध बनाता हूं। कितनी गंभीर बात भगवान ने कही है कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त आगे चलते हैं, ब्राह्मण चलते हैं, वो जो इनकी गुण ये हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, जब वो चलते हैं उनके चरणों से जो धूल उठती है मेरे ऊपर पड़ती है, उस धूल से अपने अंदर स्थित सारे जगत को मैं शुद्ध बनाता हूं। प्रभुपाद जी श्लोक के परपोट में बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं जिस तरह भक्तगण सदैव भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण अपने भक्तों के भक्त होने के कारण उन भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। जब भगवान द्वारका में थे तो द्वारका से भगवान के दो भक्त हुए हैं, मिथिला नरेश राजा बहुलास और सुखदेव ब्राह्मण, दसवें स्कंद के 86वें अध्याय में इसकी कथा आती है प्रभु जी माता जी। तो भगवान ऋषि मुनियों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, अपने भक्तों को साथ लेकर के अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। जगन्नाथ जी तो आ रहे हैं 20 तारीख को दर्शन देने, मथुरा में दर्शन देने के लिए। तो भगवान कृष्ण भी दर्शन देने के लिए भक्त वहां नहीं आ सकते तो स्वयं जाते हैं। तो एक रूप में कहां जाते हैं, एक रूप में जाते हैं उनके पास, किसके पास, राजा बहुलास के पास। दूसरे रूप में अपने सब ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, शुद्ध भक्तों को लेकर के किसके पास जाते हैं, सुखदेव ब्राह्मण के यहां। बड़े सुंदर श्लोक भगवान बोलते हैं वहां पर जाकर कि दसवें अध्याय के 86वें श्लोक का 51-52-53 श्लोक है प्रभु जी माता जी। भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणस्ते अनुगार्थाया अनुग्रहार्थाया संप्राप्तान वेद मन मुनिम संचरति मयाम लोकान पुनंत पाद रेणुभिः। भगवान ने कहा सुखदेव ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, तुम यह जान लो, क्या जान लो, कि ये जो महान ऋषिगण तुम्हें आए हैं मेरे साथ, ये तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगत में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूल से उसको पवित्र बनाते हैं। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं अपने चरणों से धूल पवित्र बनाता हूं। ये सब ब्राह्मण जो ऋषि आए हैं, ये अपनों के चरणों की धूल से उसे पवित्र बनाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, देवा क्षेत्राणि तीर्थानी दर्शन स्पर्श नाच स्पन। हम मंदिर में आते हैं, तीर्थों में जाते हैं, अर्चना पूजा करते हैं, उससे मनुष्य धीरे धीरे पवित्र बनता, शुद्ध बनता है। किंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि करने मात्र से उसे तत्काल ही वही फल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है प्रभु जी माता, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे सामने दो ऑप्शन है कि हम तीर्थ में गए और तीर्थ में हमारे पास समय कम है, तीर्थ में जाके तीर्थ में स्नान करना है, या फिर तीर्थ में जो ऋषि हैं, जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनके दर्शन करने हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम पहले जाओ, संतों के दर्शन करो, उन शुद्ध हो जाओगे। कुबेर के दोनों पुत्र कौन, मणिग्रीव और दोनों के दोनों केवल नारद मुनि के दृष्टि पात्र से ही किसके पात्र बन गए। अंत में जाकर जी गोस्वामी जी लिखते हैं इसमें कि गोलोक धाम में गए क्या करने के लिए गए, एक का नाम पड़ गया मुग्ध कंध, दूसरे का नाम पड़ गया स्निग्ध कंठ, दोनों भगवान की लीलाओं का गान करते हैं गोलोक धाम में केवल दृष्टि मात्र से। भगवान कहते हैं कि आचार्य माम बिजानीयाम, ये 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है प्रभु जी महाराज। आचार्य माम बिजानीयाम यावन मन्यत करहिचित नामर्त बुद्धिया सूयेता सर्वदेव मयो गुरुहु, कि मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा स्वरूप माने। जो ब्राह्मण है, जो आचार्य है, उसको क्या माने, मेरा स्वरूप माने, और किसी भी प्रकार से उसका अनादर ना करे। हम जब व्यवहार करते हैं, मैंने पहले कहा कि भागवत जी क्या है, व्यवहार है, भगवान सिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमको कभी भी जो संत हैं, साधु हैं, जो गुरुजन हैं, गुरुजन का मतलब ये नहीं कि आपने माता पिता को छोड़ दीजिए, माता पिता पहले हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, जो गुरुजन हैं, उन सबका हमको आदर करना चाहिए। कब, क्योंकि वह सब देवताओं का प्रतिनिधि है। तो प्रभु जी माता जी, जो समुद्र मंथन की लीला है, हमें बहुत सारे इसमें शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे जो मुख्य शिक्षा वो यही है कि ब्राह्मण, गुरु, साधु, हमें इनका समुचित आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति हो, उससे बच करके उनका अनादर का कभी हमारे मस्तिष्क में भाव भी नहीं आना चाहिए। एक तो आप अपमान करते हैं वाणी के द्वारा, एक अपमान होता है चिंतन के द्वारा, हमारा चिंतन भी नहीं होना चाहिए। और क्या शिक्षा हमको मिलती है? भगवान कहते हैं कि शांति और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए हुए हमें कार्य संपन्न करने चाहिए। और क्या शिक्षा मिलती है हमको? कि किसी भी कार्य में हमको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। हम जैसे दैत्यों ने अमृत का कलश हाथ में लेकर के भी उसको नहीं पा सके, सोचिए